Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayam Mudirai.
Hare Krishna.
Tvaya Kritgena Vayam Mahipate. Katham Vinasyam Suhritumenate. Tatranuyanam Tavavira Padayo. Tena vayam mahipate katham vinasyam suhritamenate tatranuyanam tav virapadayo shushushatinam dishayatrayasya. Tagena vayam mahipate katham vinasyam suhirtamenate tatranuyanam tav virapadayo shushushatinam dishayatrayasyasi.
शब्दार्थ हमारे पीछे दो रही त्वया तुम कृतज्ञेन अत्यंत कृतज्ञ व्यक्ति के वयम हम महीपते हे राजा कथम कैसे बिना सयाम रहेंगी सुहृतमेना हमारे मित्रों में श्रेष्ठ ते तुम्हारे तत्र वहां अनुयानम अनुगमन करते हुए तव तुम्हारा वीर हे वीर पुरुष पादयो चरण कमलों की सुशस्तीना सेवा में लगे रहने वालों का दिशा कृपया आज्ञा दें यत्र कहां यास्यसि जाओगी. अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद. हे राजा हे वीर आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे. आपके बिना हम कैसे रह सके. हे वीर आप जहाँ भी जा रहे हैं कृपया करके हमारा निर्देशन करें जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और पुनः आपकी सेवा कर सकें. हमें भी अपने साथ ले चलें. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी. पुराने जमाने में क्षत्रिय राजा सामान्यतः कई पत्नियों का पति होता था और राजा की मृत्यु होने पर विशेषतः युद्ध भूमि में मरने पर सारी रानियां पति के साथ सहमारण स्वीकार करती थी अर्थात साथ ही मर जाती थी क्योंकि वही उनका जीवन होता था. जब पांडवों के पिता पांडु महाराज मरे तो उनकी दो पत्नियां थी एक युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन की माता और दूसरी नकुल तथा सहदेव की माता और वे दोनों ही अपने पति के साथ चिता में जल मरने के लिए तैयार थी. बाद में ऐसा समझौता हुआ जिससे कुंती तो छोटे छोटे बालकों की रखवाली के लिए जीवित रही और दूसरी पत्नी माद्री जो पति के साथ मरने दिया गया यह सहमारण की प्रथा भारत में ब्रिटिश शासन तक चलती रही किंतु बाद में इसे हतोत्साहित किया जाने लगा क्योंकि कलयुग की प्रगति के साथ ही पत्नियों की मनोवृत्ति क्रमशः बदल गई। इस तरह सहमारण की प्रथा एक तरह से उन्मूलित हो चुकी है। तो भी मैंने 50 वर्ष पूर्व एक डॉक्टर की पत्नी को पति की मृत्यु के तुरंत बाद स्वेच्छा से मृत्यु का वर्णन करते देखा है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पति पत्नी दोनों को शवयान में जुलूस के साथ ले जाया गया। पतिव्रता पत्नी का पति के लिए ऐसा प्रखर प्रेम अत्यंत अनूठा है। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवत क्लास में। और ये जो सप्तम स्कंध है इसमें जो वर्णन चल रहा है और इस समय जो बोल रहे हैं हिरण्यकश्यपु, जिसको हम जानते हैं कि एक असुर थे, महान असुर, जो कि हिरणाक्ष के भाई हैं। हिरणाक्ष के वध के बाद उनकी माता दिति और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को बहुत ही जो हैं कष्ट उठाना पड़ा कि उनके पुत्र की मृत्यु हुई। तो हिरण्यकश्यपु जो हैं अब अपने परिवार वालों को सांत्वना दे रहे, और हिरण्यकश्यपु जो हैं काफ़ी अच्छा ज्ञान, फिलॉसफी, सांख्य दर्शन भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो ये शरीर है ये तो मृत है, ये शरीर जो है आज नहीं तो कल सबका छूटना है और इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं। तो अब हिरण्यकश्यपु यही से ये समझाते हुए पिछले कुछ श्लोकों में जब देखा कि उनका क्रंदन नहीं रुक रहा तो उन्होंने एक कथा शुरू कर दी उनको सांत्वना देने के लिए। और इस कथा में वो बता रहे हैं एक राजा की बात। ये उशीनर नाम के स्थान का प्रसंग है। बता रहे हैं उशीनर नामक राज्य में सुयज्ञ नाम का विख्यात राजा था। जब यह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और अपने मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में लेटा था। उसका सुनहला रत्न जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर रक्त से सना था और उसका हृदय शत्रु के बाणों से बिंधा था। उसने मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतएव उसके होंठ दांतों के से भीज गए थे और दांत अपनी स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से ढका था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसके हाथ कटकर कट चुके थे, टूट चुके थे। अब उशीनर राजा की रानियों ने इस स्थिति में अपने पति को पड़ा देखा तो वह रोने लगी, हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को टेर टेर कर वे अपनी छाती पीट कर पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। इसे पिछले श्लोक जो हम लोग जिनके प्रपट नहीं वो पढ़ रहे हैं। रानियों के उच्च स्वर से रोने पर उसके आंसू वक्षस्थल पर लुढ़क आए और जहां से वे कुमकुम चूर्ण से लाल होकर फिर उनके पति के चरण स्थलों पर गिर पड़े। उनके केश बिखर गए, उनके आभूषण गिर गए और अन्यों के हृदयों में करुणा जगाते हुए रानियां अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगी। हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। इसके पूर्व आप उशीनर के निवासियों की को जीविका प्रदान करते थे जिससे वे सुखी थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बन गई है। और आज के श्लोक का अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। हे राजा, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? हे वीर, आप जहां भी जा रहे हैं कृपा करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और पुनः आपकी सेवा कर सकें, हमें भी अपने साथ ले चलें। तो देखिए, ये एक प्रसंग चल रहा है, हिरण्यकश्यपु एक राजा की कथा कर रहे हैं जिसकी बहुत सी पत्नियां हैं, लेकिन अब राजा क्योंकि युद्ध में मारे जा चुके हैं तो उनके घर वालों का विलाप का वर्णन चल रहा है। थोड़ा सा वर्णन किया कि राजा की मृत्यु की दशा कैसी है, कैसे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उनकी आंखें कैसे अब जो हैं फीकी पड़ गई हैं, चेहरा काला पड़ता जा रहा है और सारी की सारी रानियां उसके इर्द गिर्द रो रही हैं। और इस प्रकार के दृश्य हमने भी देखे, हमने राजा नहीं देखे होंगे लेकिन अपने इर्द गिर्द अपने रिलेटिव्स के यहाँ हमने देखा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार का दृश्य मातम जो है हम लोग अक्सर देखते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो कुछ समय पहले बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, हमें दिखाई दे रहा था, हमारे लिए सब कुछ करता था, अचानक उस व्यक्ति ने बोलना बंद कर दिया, हिलना डुलना बंद हो गया और धीरे धीरे उसका शरीर जो है नीला और फिर काला पड़ता जा रहा है। तो ऐसी दशा देखकर जो परिवार जन के लोग होते हैं खूब रोते हैं, उनसे रहा नहीं जाता और वो इस प्रकार के ही शब्दों का जो है उल्लेख करते हैं। क्या कहते हैं, हे भगवान जी क्या कर दिखाया, विधाता इतना निर्दयी क्यों है। यहां से आज बोलो ना, इससे पहले श्लोक में क्रूर विधाता, क्रूर बोल दिया कि भाई क्रूर है क्योंकि तुमने हमारे अत्यंत प्रिय व्यक्ति को हमसे छीन लिया। आखिर क्या समस्या है, ठीक था तो सही, हम बात करते तो थे, सब कुछ हमारे लिए कमा कर लाते थे, या उनसे मैं हंस के बातें करती थी, ये सब कुछ हमारा योगदान वो करते थे, अचानक क्या हुआ ऐसा कि आपने उसे हमारे से छीन लिया। और इस प्रकार रोते रोते जैसे प्रभुपाद जी पिछले कुछ वर्षों का यानी 50 वर्षों से पहले के और पिछले युगों का भी एक वृतांत बता रहे हैं, श्री राधा राधिकरमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, उस वृतांत बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय पहले जब वैदिक कल्चर में क्या होता था कि अगर तो पति की मृत्यु हो गई तो उस शब्द को बार बार यहां पर बोला जा रहा है सहमारण, अर्थात साथ में ही स्त्री भी जो है अपने प्राणों का त्याग कर देती, उन्हें लगता था कि अब जीने का क्या फायदा, और इस प्रकार उनको स्वेच्छा से वो लोग जिसे सती प्रथा भी कहते थे, पति के साथ अग्नि में वो स्वयं को भी झोंक देती थी। लेकिन रूपा जी कह रहे हैं कि कलयुग में अब इस चीज को हतोत्साहित किया जाने लगा, क्योंकि कलयुग की प्रगति के साथ ही पत्नियों की मनोवृत्ति कर्मशः बदल गई। पहले तो लोगों को लगता था कि अगर हमारे प्राणनाथ ही नहीं रहे तो हम क्यों जिए, किसके लिए जिए। तो इस प्रकार फिर प्रभुपाद जी एक प्रसंग और बता रहे हैं आज के तात्पर्य में, माद्री और कुंती के विषय में, कि जब उनके पतिदेव पांडु जो थे उनका देह का अंत हुआ तो दोनों ने सोचा कि हम दोनों साथ में मर जाती हैं, लेकिन आपस में क्या एडजस्टमेंट हुई कि आप मेरे दो छोटे बच्चे हैं, इनको और अपने बच्चों को पालिए, मैं जो हूँ सती हो रही हूँ। और प्रभुपाद जी फिर एक और प्रसंग बता रहे हैं, किसी डॉक्टर के पति गए तो ये कलयुग की बात है और पत्नी ने भी हो गया, तो इससे पहले प्रथाएं चलती थी लेकिन धीरे धीरे क्रमशः बता रहे हैं कि कलयुग के प्रभाव से, जैसे कि शास्त्रों में कहा है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कि दिन ब दिन धर्म की हानि होती जाएगी, दिन ब दिन दया पवित्रता ये सारे के सारे धर्म के गुण हैं कम होते जाएंगे। तो उसी तरह जो द्वापर युग या त्रेता युग में धर्म बचा था, कलयुग के आरंभ होते ही लोग के मन की वृत्तियों के द्वारा बदलने से, पाप पूर्ण कार्य में लगे रहने से अब ये धर्म की चीजें कम होती जा रही, और फिर एक से एक बढ़कर लोग आए जिन्होंने इन प्रथाओं को समाप्त किया, वो आज उनको श्रेय मिलता है कलयुग को बढ़ाने का, है ना, और उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। कारण क्या है कि लोग जो है अब उन प्रथाओं को नहीं चलाना चाहते, और फिर ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार देखता है कि उसके परिवार जनों का जो है तो कोई समाप्त हो गया, तो उसको फिर जिम्मेवारियां अगर हैं तो उसको निभाने के लिए रुकना पड़ता है। या फिर अगर इसको कृष्ण भावना में दृष्टि से देखें तो अगर हम उस पॉलिसी का खत्म कर चुके हैं तो दूसरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि व्यक्ति को तन मन धन से पति के जाने के बाद या पत्नी के जाने के बाद अपने पूरी मन वाणी और कर्म से ही अपने को भगवान की भक्ति में झोंक देना चाहिए, अपने को स्वाहा कर देना चाहिए कृष्ण भावना में अग्नि में, ताकि हमारे डिपेंडेंस और हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर अपने पूर्वजों को और अपने आश्रितों को भी भगवान का भक्त बनाकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात बार बार मृत्यु और जन्म के चक्कर से हमेशा के लिए बच सके। एक श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में 44वें श्लोक में कपिल देव भगवान अपनी माता को बताते हैं, मृत्यु के विषय में बता रहे हैं। गुरु प्रसंग इसलिए ऐसा है, उसमें बता रहे हैं कि ये मृत्यु और जन्म है क्या, क्या चीज है। तो उनका कथन है कि मृत्यु का मतलब है कि जब किसी जीवात्मा को स्थूल शरीर और मन इत्यादि प्राप्त होता है, सेंसेस मिलती हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए, और एक समय में जब सारे कर्म इत्यादि भोग लिए जाते हैं तो और वो समाप्त हो जाते हैं कर्म के रिएक्शन, है ना, जो उसके कर्म किए, तो जब व्यक्ति खत्म हो जाते हैं तो उसका शरीर खत्म हो जाता है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। और जो और उसकी जो इच्छाएं डेवलप हुई और उसने कर्म किए शरीर में, उसके आधार पर जो उसको नया इंद्रियां और मन मिलता है, इसे जन्म कहते हैं। तो अपनी माता को संदेश देते हुए वो यही चीज बता रहे हैं जिस प्रकार की आज के इस प्रसंग में है कि लोगों को शोक क्यों होता है और शोक का कारण क्या है, अज्ञानता। कि कैसे व्यक्ति जब अज्ञानतावश अपने को ही ये देह मान बैठता है कि ये शरीर मैं हूं, और फिर मैं मेल या फीमेल भी हूं, फिर मैं किसी न किसी धर्म में पैदा हुआ हूं, चाहे वो अपने को धर्म से जोड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के माध्यम से, फिर वो अपनी एक जाति भी समझता है कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं, फिर अपनी एक उपाधि भी है कि मैं ये व्यक्ति हूं समाज में, मेरा ये रुतबा है, इस प्रकार की नाना प्रकार की उपाधियां और इंद्रियतृप्त के विषयों से वो जब आसक्त हो जाता है अज्ञानता के कारण, और अज्ञानता क्या है कि वो ये भूल चुका है कि मैं कौन हूं, अपने को शरीर ही समझ बैठा है, इसलिए इस शरीर से संबंधित जो चीजें उसके पास हैं वो कहता है ये मेरी हैं। क्यों? क्योंकि शरीर मैं हूं, और मैं और मेरा अहम ममेति मन्यते, उन सारी चीजों को वो अपना मान बैठता है। और जब कभी उसमें कहीं कमी आती है, जो चीज उसके पास है या उसे छीन ली जाती है, तो उसको असहाय दुख होता है, चाहे फिर वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो, कोई सामान हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति यह हो जो हमारा खुद का अपना है, खुद का परिवार वाला है। तो इस प्रकार व्यक्ति से जब कुछ छीन लिया जाता है तो व्यक्ति को बहुत दुख या परेशानी होती है, और उसका कारण क्या है, उसकी अज्ञानता के कारण उन सारे विषयों से या उन सभी लोगों से उसकी वो आसक्ति, वो अटैचमेंट जिसने वो अपना मान बैठा है। इस प्रसंग में भी राजा का क्यों प्रसंग देना पड़ा हिरण्यकश्यप को, क्योंकि वो देख रहा है कि ये लोग इस प्रकार दहाड़े मार के रो रहे हैं, कारण क्या है कि भूल चुके हैं हम कौन हैं, शरीर क्या है, ये तो एक नियम है व्यक्ति का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, ये भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि जब व्यक्ति इस जीवन को जीता है तो नाना प्रकार के विषयों का जब भोग करता है तो उस भोग के समय वो ये भूल जाता है कि इस भोग का अंत होगा और ये बाद में भोग मुझे जो है दुख देगा, मेरी जितनी ज्यादा आसक्ति इस संसार में बढ़ रही है उतना ही अधिक मुझे दर्द होगा, ये भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी इंद्रियों को सुख मिल रहा होता है, संस्पर्शा भोजा होगा, अर्थात इंद्रियां इंद्रिय विषयों से क्योंकि संलग्न है या उसके साथ उसका इंटरेक्शन चल रहा है तो मन में एक अलग से प्रकार की अनुभूति, सुख की अनुभूति वो फील कर रहा है और बार बार होने से वो उससे आसक्त हो जाता है। और ऐसी आसक्ति में जब रुकावट आती है, चाहे फिर वो परिवार का पालन करने वाला कुटुंब का अधिकारी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए कमाता है, वो व्यक्ति हमें वो सारे साधन उपलब्ध कराता है जिनसे हमारी इंद्रियां और हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, या वो स्त्री जो है क्योंकि मेरे मन और मेरे शरीर और मेरी इत्यादि इंद्रियों को संतुष्ट करती है इसलिए मैं उससे आसक्त हूं। ये बच्चे मुझे अलग से आनंद प्रदान करते हैं, जब तोतली भाषा में बोलते हैं तो मुझे बड़ा खुश महसूस करता हूं कि ये मेरे हैं, मैं इनसे जैसा मर्जी प्यार कर सकता हूं, कुछ ना मानने पर डांट सकता हूं, लेकिन ये सब काम मैं दूसरे को बच्चों के साथ नहीं कर सकता, किसी को डांट नहीं सकता। किसी को प्यार करने के लिए पास जाओगे तो लोग आपको जेल में डाल देंगे, क्यों आप हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहे हो? तो उसको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उसके अपने कहलाएं, जिनके ऊपर वो जो मर्जी कर सके, जैसा मर्जी बोल सके, जितना मर्जी प्रेम कर सके उन्हें, उसके अधिकार क्षेत्र में हो। इसीलिए वो स्थान भी चाहता है कि कहीं मैं बैठूं तो मुझे को उठाना थे, भाई साहब उठिए प्लीज, ये जगह मेरी है, आप इस बाउंड्री के अंदर मत आइए, क्योंकि बाहर देखा भी आपने क्या लिखा है, ये शर्मा जी का घर है, शर्मा मैं ही हूं, तो आप बाहर जाके शर्माइए, आप यहां मत आइए। तो जब जब व्यक्ति को रोका टोका जाता है या उसकी इंद्रिय तृप्ति में कहीं ना कहीं अवरोध आता है तो व्यक्ति क्या ठान लेता है कि मैं इन सब चीजों को अपना, मेरा कब होगा ताकि मुझे कोई रोक ना सके, कोई टोक ना सके। जब कोई व्यक्ति किराए की जगह पर भी जाता है, किराए की जगह पर मालूम है उसको ये मेरी नहीं है, किराया देने मात्र से उसको लगता है बस मेरा हो गया, और जितने दिन तक का किराया उस बीच में वो किसी की हस्तक्षेप नहीं चाहता, बस की या ट्रेन की टिकट खरीदने मात्र से ही व्यक्ति लगता है सीट मेरी है, बैठे बैठे व्यक्ति की टांगे दर्द हो जाए लेकिन वो खड़ा नहीं होता, उसको लगता है कि बड़ी मुश्किल से मिली, मतलब खड़ा होकर जितना उसको दर्द होगा उसको बैठ के घुटनों में दर्द हो रहा है उतना, लेकिन वो खड़ा क्यों नहीं होना चाहता, क्योंकि मैंने पैसे दिए, मुझे पैसे वसूल करने, इतनी देर तक का अधिकार मेरा है। ट्रेन में अगर उसने टिकट ले ली तो वो किसी चौथे व्यक्ति को साथ बैठना नहीं देख ना सकता, उसको लगता है पैसे मैंने पूरे दिए हैं इस पे मेरा अधिकार, इतनी जगह पर तो कम से कम मेरा अधिकार है। और जब कोई व्यक्ति किसी को करुणावश कहता है आप खड़े में प्लीज साथ में आ जाइए ना, कहता है भाई सब थोड़ा सा उधर हो जाइए, तो उसको बहुत जलन होती है, पैसे मैंने दिए, पहले मैं आया था, जगह मेरी है, नंबर मेरा है, आप कौन होते उसको बीच में उठाने के। और अगर कोई व्यक्ति सो जाए तो पूरी रात जाग जाग कर देखते रहते भाई कोई बैठ तो नहीं गया, अगर कोई बैठ जाए तो जबरदस्ती उसको मालूम है टांगे सीधी कर करके मेरी टांगे दर्द हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो फोल्ड नहीं करता, क्यों? क्योंकि कोई और आके ना बैठ जाए। तो इस प्रकार जब जब हम लोग अपने इंद्रिय विषयों के साथ अनुरक्त हो जाते हैं हमें एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति तो लगती है, कुछ ना कुछ महसूस तो होता है सुख सा। लेकिन आपको बता दें भगवान भी कह रहे हैं और रूपा जी बरबट में कह रहे हैं तीसरे अध्याय में भगवद गीता में तीसरे अध्याय के 37 श्लोक में कि हो सकता है इस भौतिक जगत में इंद्रियों के संसर्ग से हमें कुछ अनुभूति हो सुख की, लेकिन वास्तव में हम लोग इस सुख को भोगने से अपने आने वाले कई कई जन्मों के लिए रिएक्शंस पैदा कर रहे हैं ताकि हम लोग इस जगत से बाहर ना निकल सके। इसलिए कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता कारण की अज्ञानता में, कुंती महारानी कह रही है कि हे भगवान, विपदा संतुदा शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, दीजिए दुख दीजिए और समस्याएं दीजिए और कष्ट दीजिए। हम मंदिर आके कष्ट मांगते हैं, दुख मांगते हैं, कोई बीमारी मांगते हैं। हम बोलते हैं भगवान को जो है उसे जल्दी से हटा दो, ऐसा वातावरण दीजिए भगवान कि बस आनंद ही आनंद रहे, कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए। तो जो जितना सुख में, जितना कंफर्टेबल जोन में है, वो उतनी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि वो हमें बांध देती है उस जगह से। और जब ऐसे कंफर्टेबल जोन में रहते रहते हमें आदत पड़ जाती है और फिर अचानक लाइट चली जाए, अरे लाइट तो अभी आई है कुछ साल से पहले, है ना, उससे पहले तो लोग घर में चिमनी और पंखा हाथ से करते थे, तब लोग नहीं जीते थे क्या? जीते थे, समय से सो जाते थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाते थे, समय से सुबह काम करके अपने काम जाते थे, शाम को वापस आ जाते, हेल्दी रहते थे। और अभी क्या है, टेलीविजन 12 बजे तक तो सीरियल ही खत्म नहीं होते प्रभु जी, तो 12 बजे सोने वाला व्यक्ति कितने बजे उठेगा? सुबह 12 बजे उठेगा, और अगर कमाई करनी है तो पानी डाल दिया जाएगा ऊपर, जाओ करके लाओ, कमा के लाओ, है ना, तो 8-9 बजे उठाया जाए। तो पहले ये सारी चीजें मतलब इस प्रकार से हमारे पास थी कि हम लोग समय से सोना उठना चलता था। और अगर अब हम देखें, पहले माताओं को देखिए, फैन सिस्टम नहीं था, वह हाथ वाला ही होता था, खिड़की खोलते थे, घरों में चूल्हे होते थे, किसने देखा चूल्हा सिस्टम जलाया हुआ, किसी ने हाथ खड़ा? मैंने भी जलाया फूक मारकर लकड़ी से। ऐसी गर्मी में जहां पर आंखें उसको धुआं लग रहा है, खाना बना रही हैं, चपातियां बनानी पड़ रही हैं, घर में संतान एक आदि नहीं होती थी, अभी एक आदि है, पहले 8-8, 10-10 संतानें घर में होती थी, पति देव होते थे, खुराक ऐसी नहीं होती थी, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे आदि दे दो, खुराक होती थी एक एक व्यक्ति की 8-8, 10-10, 15-15 चपाती की, बढ़िया छाछ पीने की, और ये सारे एक या दो महिलाएं करती थी घर में सारा, पहले तो माता ही करती थी, जब तक कि संडे टू सैटरडे बड़े नहीं हो जाते, मतलब बच्चे, एक ही महिला करती थी सारे काम। और उतनी गर्मी में ही, और उसके बाद भी पूरा तन ढका होता था, सर पे पल्लू भी रहता था, सारी परिस्थितियों के बावजूद भी वो परिवार वालों को खुशी कर सब कुछ देती थी। समय से समय बदल गया, अभी लोगों को लगता साड़ी, ओह कहां जाना है, मतलब अब ये साड़ी आजकल के लोगों के लिए ऐसे ओकेजन पे पहनने के लिए हो गया, या तो मान लो अगर कभी शादी में जाना है या फिर किसी की मृत्यु पे जाना है, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए साड़ी है ना, और सर ढकना क्या प्रॉब्लम है सर, क्यों ढकना सर? तो ये सारे संस्कार छूटते जा रहे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व भर में ऐसी संस्कृति, वैदिक संस्कृति का प्रचार हुआ कि लोगों को अब ये वॉलेंटरली तपस्या करने लगे, लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारा कल्चर है, ये वैदिक कल्चर है, और इस कल्चर को अपना कर हम लोग एक तो अपने को भी बचाते हैं, अपनी भी रक्षा करते हैं। और नेचुरली आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति सादे कपड़ों में है, पूरे कपड़ों में है, वैदिक ड्रेसिंग में है, और एक सो कॉल्ड आज के मॉडर्न ड्रेसिंग में है, और मॉडर्न ड्रेसिंग को आप जानते हैं जो जितना छोटा उतना ज्यादा मॉडर्न, तो किसी की भी चेतना आप देख सकते हैं, उनको देखकर एक के प्रति रेस्पेक्ट की रहेगी और एक के प्रति कामुक दृष्टि रहेगी। नेचुरली हो ही जाता है। तो इसलिए ये वैदिक कल्चर जो था ये बहुत पवित्र था। बताते हैं कि स्त्रियां पति के घर से बाहर जाने पर अपने को सजाती संवारती भी नहीं थी। किसके लिए? पति तो नहीं, तो जब आएंगे तब फिर सज जाएंगे, बाकी दिन पूरा अपने को बिजी रखते थे घर। सिंदूर का अर्थ होता था क्या? कि ये वही महिला विवाहित है और इसके हस्बैंड भी है, सिंदूर को देख के पता चलता था। अब ये प्रथाएं खत्म होती जा रही, कारण क्या है? ग्रॉस भी है और सटल भी। तो जिन प्रथाओं को, जिन परंपराओं को जो हमारी रक्षा सुरक्षा करती थी, जो परंपराएं, जो ट्रेडिशंस, हम लोगों ने उनको छोड़ दिया। और जब छूट गई ये चीजें तो अब ये एक विकराल रूप लेकर, एक राक्षसी रूप लेकर उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक कर रही है दूसरे ढंग से। पुरुष प्रधान समाज बोलते थे, लेकिन इसका कुछ श्रेय स्त्रियों के डिग्रेडेशन का पुरुषों को भी जाता है, कारण कि वो लोग भी वैदिक सभ्यता के अनुसार चलना बंद कर दिए, गीता भागवतम की कथाओं के अनुसार, टीचिंग के अनुसार चलना बंद कर दिए और एक्सप्लॉइट करने लगे लोगों को, स्त्रियों को, तो उनका भी डिग्रेडेशन हुआ। तो इस प्रकार पूरे के समाज में हाहाकार शुरू होता जा रहा है। जो कलयुग के लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों के माध्यम से हम देखें जो कि अंतिम समय में होना है, उसके सारे लक्षण आज हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि जो इंद्रिय तृप्ति के साधन है, जो लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, जिनसे वो आसक्त हो जाता है, जब वो छूट जाते हैं, या जो भगवान कहते हैं अहम कालोस्मि, मैं काल के रूप में आकर मृत्यु सर्व हरश्याहम, मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ हर लेता हूं, और जब वो हर लिया जाता है तो हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, जिसकी भी इंद्रिय तृप्ति के साधन या साधन प्रदान करने वाला व्यक्ति अगर दूर चला जाएगा या हट जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी तो दुख होगा। इसलिए लोग बोल रहे हैं, यहां पर पत्नियां कह रही हैं, अब हमें खाना कौन खिलाएगा, अब उनका पालन कौन करेगा, अब हमसे बातें कौन करेगा, अब ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। क्यों? क्योंकि पहले ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल थी कि जब ये सारी चीजें इजिली हो जाती थी। इसलिए इस विरह में ही स्त्रियां सती हो जाती थी। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि आप हमें सेवा में लगाइए, हमें बताइए, हम भी आपके साथ चलना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि अब कलयुग बढ़ चुका है, बढ़ रहा है, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो ये प्रथाएं खत्म हुई। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति जो भी इस भौतिक जगत में है, अगर वो कृष्ण भावनामृत होता है, अर्थात भगवत गीता और भागवतम के आधार पर अपना जीवन जीता है, तो वो इस मृत्यु पर ही विजय पा सकता है। वो शाश्वत बन सकता है। इस देह के बदलाव से वो आसक्त नहीं होता। जिस प्रकार बताया गया भगवत गीता में, देहे नस्मृता देहे कौमारम योगनंदर तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्वाम होयति, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था जिस प्रकार जीवात्मा प्राप्त करती है, और इन बदलावों से हम मोहित नहीं होते, हम देख रहे हैं हमारे भी हो रहे हैं उन चेंजेस, उनके भी चेंजेस हो रहे हैं। और उस प्रकार जब वृद्धावस्था के बाद मृत्यु में जाता है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है तो भी व्यक्ति चिंतित नहीं होता, क्योंकि वो धीर व्यक्ति है। धीर का मतलब जिसने धारण किया हुआ है इस ज्ञान को, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एक मृत्यु, एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता खूब रो रहे थे, तो एक साधु आए, उनको कंसोल किया, भैया शरीर है, नाशवान है, जो आया है उसे जाना है, तो ठीक है, उसको अच्छा लगा, ठीक है, सत्य है, चुप हो गया, कुछ समय के बाद वही व्यक्ति जा रहा था तो एक कुटिया से रोने की आवाज आ रही, देखा रही तो वही साधु का घर है, ये क्यों रो रहा है? तो देखा साधु रो रहे, और साधु क्यों रो रहे? क्योंकि उनकी गोदी पे एक बकरी थी। कहते महाराज रो रहे हो आप? कहते हाँ, क्यों? मेरी बकरी मर गई। फिर बकरी मर गई? पिछली बार तो आप मुझे ज्ञान दे रहे थे कि सब कुछ आना जाना है, जो आया है चला जाएगा, और ये तो ऊपर से बकरी है। कहते अरे वो तुम्हारा लड़का था, ये मेरी बकरी है, ये मेरे साथ रहती थी, मुझे दूध पिलाती थी। तो ज्ञान का अनुशील अर्थात ज्ञान जो मिल गया, धीर व्यक्ति उसको धारण कर लेते हैं, उसे पता है कि ये बदलाव जो हो रहे हैं ये क्षणिक है। हम जो इस पृथ्वी पर दिख रहे हैं चलते हिरते फिरते, जब आप आकाश मार्ग से अपने को देखो ऊपर से नीचे, नीचे के लोगों को, तो कोई किसी की कोई वैल्यू नहीं दिखती। कौन कौन सी गाड़ी में जा रहा है कुछ पता नहीं चलता, बस ऐसा लगता है चीटियां चल रही हैं कुछ, किसका कौन सा ब्रांड है, कौन क्या है, कुछ पता नहीं होता। इतनी ऊंचाई से किसी की बहुत बड़ी कोठी भी है वो भी माचिस की डिब्बी के बराबर लगती है। जिस प्रकार हमने एक बार पहले भी बताया था कि एक बार हमने देखा था इस प्रकार चींटियां जो है बहुत ऊपर चढ़ रही थी और लाइन से चल रही थी, और उन चींटियों में किसी के पास चीनी का दाना था, कोई आटे का दाना था, कोई खाली थी, बट चल रही थी सब कुछ, कुछ ना कुछ लिए, और अचानक वो लगभग 3 इंच लेफ्ट मुड़ती है ऊपर दरवाजे के पास और फिर नीचे आना शुरू कर देती। अरे मैंने कही क्या मतलब, इधर से इतनी मेहनत करके इतने दिन लगा दिए, इनके जीवन का कितना परसेंट तो ऐसे खत्म हो गया ऊपर जाने में जितनी उनकी आयु है, और उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया फिर 3 इंच के बाद वापस नीचे आ गई। अरे यहां से इधर ही आया था सीधा। और फिर उन चींटियों को देखकर मैं क्या सोच रहा था कि अरे किसी के पास इसमें चींटी का पूरा मतलब चीनी का दाना है पूरा, तो वो अपने को क्या समझती होगी, मैं कौन हूं? बिल गेट से कम नहीं, कई दिन का मसाला है मेरे पास। जैसे आटे का दाना, तो कहते हम भी कम नहीं है जी, उसमें कोई स्टार है, कोई सुपर स्टार है, कोई अच्छा चलता है, किसकी चाल मतवाली है, कोई किसी का फेयर चल रहा है, कोई कुछ है, कोई इंजीनियर है उसमें उनके कैटेगरी के हिसाब से हर व्यक्ति कोई ना कोई उपाधि लेकर चल रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या है, वो कोई वैल्यू है कहीं? चींटी, थोड़ा पानी फेंको सब खत्म, थोड़ा सा पानी फेंकने से वो उनके लिए सुनामी बन जाएगी और सब खत्म, तो कोई वैल्यू नहीं। क्या विचार चल रहे हैं मन में, क्या इच्छाएं हैं, किसका क्या बैंक बैलेंस है, किसके पास क्या है, कौन किस कास्ट का है, कौन कौन क्रीड का है, कौन कौन से रंग का है, कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार इस सरफेस इस भूमंडल के धरातल पर जब देवता लोग ऊपर से देखते हैं तो देखते हैं चींटियां चल रही हैं और हम यहां पर फन्ने खा बने में कि मैं ये हूं, मैं 30 मार खा, मैं ये और मैं वो, और इतनी सारी आसक्तियां, मैं आज ये करूंगा फिर वो करूंगा फिर खत्म, एक हवा आई फिर कुछ गए, फिर आए कुछ और मर गए, कुछ और मर गए, कोई वैल्यू नहीं है। उसी में रोना भी, उसी में धोना भी, उसमें इकट्ठा भी करना, उसमें फिर हमने भी मरना है, फिर औरों को देकर जाएंगे, फिर वो मरे, यही सब चल रहा है। लेकिन इन सब चींटियों में या हम सब जीवों में वो स्पेशल हैं जो लोग आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल रहे हैं, वो स्पेशल है। और भक्त के लिए तो जीवन और मरण की कोई वैल्यू भी नहीं है, अनासक्त है वो उन सब चीजों से जिसे भौतिकतावादी आसक्त होके हर समय दुख और सुख का अनुभव करता है। इस संसार में हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को देहात्म बुद्धि से इन विषयों के संसर्ग से मिलने वाले अनुभवों अनुभूतियों या सुख से ऊपर उठाए अपनी चेतना को, तब जाके उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, दुख आया, कष्ट आया, कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु होने पर भी किसी की भी, अपने करीबी की या दूर की, से कोई चिंता नहीं होगी, कारण इसे पता है कि तो होना ही था, अभी इनका नंबर है, अभी कल को मेरा भी नंबर है। एक कथा और भी आती है जिसमें ये बताते हैं कि एक बार जब किसी का इसी में इशारा आ गया कि इतना रोई पत्नियां मृत्यु के पश्चात कि यमराज तक आवाज उनके चिल्लाने की, यमराज जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए, कहा क्यों रो रही, उनको सांत्वना देने लगी। वो नहीं चुप हो रही थी, चले गए चले गए, कहते ओके। फिर उन्होंने उनको बताया कि एक बार एक शिकारी था, आपस में कबूतर और कबूतरी बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन अचानक शिकारी के जाल में कबूतरी फंस गई और शिकारी ने उसको पकड़ लिया। कबूतर से रहने का छटपटाता रहा, मेरी पत्नी को ले गया, उस पता नहीं क्या करेगा, कैसे काट डालेगा उसको, अब मैं किसके साथ रहूंगा, मैंने उसके साथ कैसे लम्हे बिताए। खूब शोक कर रहा था कि अचानक दूसरा जाल आया और पति को भी ले गया, उसको भी मार दिया। तो जब पत्नी ने सुना बाप रे बाप अपना भी नंबर आने वाला है, तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक, अब क्या करना चाहिए, कहते भक्ति करनी चाहिए ऐसे करके। तो कहने का मतलब है हर एक व्यक्ति का नंबर आएगा। कई बार हमने सुना है कि ऐड भी आता कि मेरा नंबर कब आएगा, आएगा, सबका नंबर आएगा। एक व्यक्ति ने गाड़ी के पीछे लिखा था सबको जल्दी है, नीचे लिखा छोटे मरने की। तो कहने का क्या मतलब है कि क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ भी होनी, इसलिए ये ऐसी तैयारी करें जिससे कि हम लोग ऐसे मनस्थिति हो जाए हमारी कि इन संसार की किसी भी न्यूज से हम डिस्टर्ब ना हो, किसी भी तरह की खबर से, किसी भी तरह के विचार से, किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले दुख से या प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले दुख से हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्तर पर पहुंचे और भक्त लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जो हिरण्यकशिपु, श्रीमान हिरण्यकशिपु जो ये प्रवचन दे रहे हैं और जो समझाना चाह रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम ये सीख लें कि हाँ हम लोगों को जल्द से जल्द उस स्तर पर पहुंचना है, ताकि ये घटनाएं हमारे साथ आएंगी तो भी हम डिस्टर्ब ना हो। चींटियों को याद रखना कि नहीं नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तो ये हूँ, मेरे साथ तो ये था, मेरे को तो इतने लोग जानते थे, मेरा फिर ये था वो था, उधर कुछ छीन लिया, उधर कुछ हो गया कोई वैल्यू नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो इन ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़े, हरे कृष्ण महामंत्र जप करे। यही हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म तक लेके जाएगा जहाँ से कि हम लोग इन सारी अनर्थों से बच सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। एक छोटा सा और हम लोग पढ़ना प्रयास करेंगे। आज जैसे वक्रेश्वर का तिरुभाव तिथि है, तो ये वैष्णव आचार्य हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण के ही युगल अवतार थे, और जब आए तो अकेले नहीं आए, अपने सारे पार्षदों के साथ आए राधा कृष्ण चैतन्य महा के अवतार में। तो उन्हीं में से कुछ पार्षद इस प्रकार थे, जिनका नाम है श्री वक्रेश्वर पंडित। एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने भावतिरेक में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे शिव संगम में, तो कई बार एक्सट्रेसी हमेशा एक्सट्रेसी में रहते थे, तो खूब जो है कीर्तन हुआ, खूब सुंदर कीर्तन हुआ, तो वक्रेश्वर पंडित वहीं थे और बता रहे हैं कि उन्होंने लगभग लगातार 72 घंटे, कितना समय हो गया, 3 दिन लगातार नृत्य किया। कोई डांस कंपटीशन नहीं था, जैसे आजकल सुनते हैं कि डांस कंपटीशन होते हैं, कोई उछलता है कूदता है और जो ज्यादा उछलता है या ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको कुछ पदक मिल जाता है। यहां पर लगातार 72 घंटे भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के ही साथ नृत्य किया जा रहा है। कोई कैमरा नहीं लगा, कोई रीटेक नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं की, केवल भगवान के लिए नृत्य हो रहा है। तो ये भक्तों के अंदर क्योंकि ऐसा भाव रहता है, इसलिए समय काल परिस्थिति उनके ऊपर हावी नहीं होती। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, हमेशा भजन में रत रहते थे और 3 दिन में एक बार 100 ग्राम मट्ठा पीते थे, बस ये पीकर जीवित रहते थे, बाकी सारा समय भक्ति करते थे। तो भक्तों के ऊपर, जो शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर इस संसार की जो है परिस्थितियां हावी नहीं होती, जिसके लिए हम आपको बता भी रहे थे कथा के अनुसार। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वक्रेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता था। तो पंख से तुलना कर रहे हैं वक्रेश्वर बोले कि कितना नाचते हैं, कितना घूमते हैं। ऐसे ही हमारे संस्था में एक भक्त और हैं, भक्त अवतार प्रभु, अगर आप जानते हो, देश की सारी रथ यात्राओं में मिलते हैं और कम से कम 10 से 12 घंटे नृत्य करते हैं भगवान के प्रसंग बिना रुके। और आप उनको कभी देखेंगे कि कभी ऊपर भी होते हैं वो हमारे साथ, प्रसाद पा रहे हों या स्नान कर रहे हों या प्लेट हो रहे हों, अचानक कहीं कीर्तन की उनको ध्वनि सुनाई दे जाए तो बर्तन छोड़ के वहीं नाचने लगे। उधर तो कोई देख नहीं रहा उनको, कौन देख रहा है? भगवान देख रहे। तो बता रहे मेरे पास एक ही पंख है, अगर एक पंख और होता तो मैं गगन में उड़ जाता। गायन व नर्तन में पारंगत वक्रेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियों जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा है, कली काल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भावनामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। जब वे आए मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सम महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतरलीन श्री गौरांग हरी बोल का विनोद करते हुए सबसे श्री कृष्ण नाम लेने को कहते। अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए भगवान गौरहरि भावोन्माद में नृत्य करते। उस समय वक्रेश्वर पंडित तथा अन्य भक्त गण भी भगवान के संग नाचते। वक्रेश्वर पंडित के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तब श्री चैतन्य ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने वक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं तब वक्रेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को वक्रेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र बन जाता है। एक वैष्णव आचार्य भजन में कहते हैं, तुमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। इस संसार का कार्यभार देख रहे हैं, विश्राम करने कहां जाते हैं? भक्तों के हृदय में। वैसे तो परमात्मा खड़े हैं सबके हृदय में, खड़े हैं, बैठे भी नहीं, लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। आह, कंफर्टेबल, ये जगह ठीक है। तो उसी तरह बता रहे कि वक्रेश्वर पंडित के हृदय में भी महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान का अधिष्ठान अर्थात स्थान है जहां भगवान रहते हैं। और भगवान जब जब नृत्य करते हैं अंदर तो वक्रेश्वर पंडित भी नाचते हैं बाहर। और बताते हैं कि जब हृदय में गोविंद हैं तो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, कि ऐसे भक्त लोग जिनके हृदय में भगवान हैं, जिनकी वाणी में भगवान है, जिनके मुख पर भगवान है, जो भगवान के लिए ही जी रहे हैं, तो वो भगवान के चरण कमलों को सदैव क्योंकि हृदय में रखते हैं। और जहां भगवान के चरण हैं गंगा उन्हीं चरणों से निकलती है ना गंगा। तो ऐसे भक्त जब जिस भी स्थान पर जाते हैं तो वो उन स्थानों को, चाहे वो जैसा भी स्थान हो, वो भी पवित्र हो जाता है, वो भी तीर्थ स्थान बन जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे भक्त लोग जब तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं, जैसे गंगा मैया ने प्रार्थना करी भगवान से कि पाप बढ़ते जा रहे हैं, आप तो धाम जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले जाइए। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, इस कलयुग में लोग बहुत पापी होंगे तो आप उनके पाप धोना। कहते इनके पाप धो दोगे तो मैं भी गंदी हो जाऊंगी। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे मेरे भक्त से भक्त होंगे जो हरिनाम कीर्तन करते होंगे, जो वैष्णव जन होंगे, जब वो आकर आप में स्नान करेंगे तो आप फिर से पवित्र हो जाओ। तो ऐसे वैष्णव जब चलते हैं जिस भी स्थान पर जाते हैं तो ऐसे स्थानों को क्या कर देते हैं? तीर्थ बना देते हैं। ये वैष्णव की क्वालिटी है, गुण है। तो वक्रेश्वर पंडित परमानंदपुरी रूप स्वरूप दामोदर गदाधर जगदानंद पंडित शंकर रघुनाथ द्वैत तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। वक्रेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधाकांत के अर्च विग्रह प्रतिष्ठित किए। कवि कर्णपूर्ण ने के कथनुसार वक्रेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। जो चतुर्व्यूह है, जिस चतुर्व्यूह से फिर महाविष्णु प्रकट होते हैं, तो उसमें जो अनिरुद्ध हैं उनके अवतार बताए जाते हैं। वक्रेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्त गणों को दीक्षा दी। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद अपने ग्रंथों में कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हैं तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो यहाँ पर उनके दो अवतार बताए जा रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, कि एक तो अनिरुद्ध के रूप हैं और एक तुंग विद्या सखी, जो कि अष्ट सखी में एक सखी है मुख्य। तो भक्त लोग के कई अवतार हो सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। कुछ गौर लीला में होते हैं, वही भक्त हो सकता है कृष्ण की लीला में भी हों, और वही भक्त कई बार इस भौम लीला में भी होते हैं, और कई लोग इस प्रकार अवतार लेके यहाँ कुछ विशेष कार्य से भी आते हैं। तो भक्त लोग भी अपने को विस्तारित कर सकते हैं भगवान की इच्छा अनुसार और इस संसार में भगवान के कार्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को भी प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर पेमानंद।